તારીખ 3/4/1991 ના દિવસે પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા પાવાપુરીમાં થયેલ તત્વચર્ચા, સળંગ નંબર 27.
વર્તમાન પરિણામો પરથી દ્રષ્ટિ કે કારણ વસ્તુ પરિણામ જીતની આશિક હોતી હૈ. इसलिए पुरुषार्थ करो, ज्ञान करो आदि पर्याय का कर्तृत्व काफी प्रयोग रहता है. जो मिथ्या भाव है, वर्तमान परिणाम पर की दृष्टि उतना ही में अस्तित्व, उतना ही अस्तित्व लगता है, तो फिर उसमें मैं ये करूँ वो करूँ ऐसा परिणाम को करने का एक अभिप्राय, कर्तृत्व का अभिप्राय बना रहता है. वो वास्तव में मिथ्या भाव है, ऐसे कर नहीं सकते. जैसे आत्मा ऐसा पदार्थ है कि जिससे अपना गुण धर्म है, तो कार्य तो गुण धर्म के अनुसार होगा, इच्छा के अनुसार नहीं. तो जैसे चना है, वो उसको सिखाते हैं तो फिर वो उसका अंकुर निकलने के लायक नहीं रहता है. तो एक उसकी परिस्थिति बन गई. वैसे जैसे जैसे परिणाम होते हैं ऐसे इनकी परिस्थिति बनती रहती है. वो अपना गुणधर्म के अनुसार कार्य होगा, उसका दूसरा कोई चिंता नहीं है किसी का. जैसे श्री गुरु का बोध एक को लगता है, दूसरे को नहीं लगता है. क्या कारण? बोध को दोनों के लिए जो है सो है. एक की योग्यता कोई ऐसी बन गई है उल्टी सुलटी, तो उसका असर नहीं होता. सुनने के लिए तो दोनों बैठे हैं, तो एक की योग्यता ठीक है तो उनका बोध का असर होता है. तो असर होने नहीं होने में अपना गुण धर्म के अनुसार जो स्थिति बन चुकी है उस पर आधारित है. सब उनको तो दोनों सुनने वाले को अभिप्राय तो एक सा है कि मैं बोध को ग्रहण करूं. वो एक ग्रहण कर सकता है, एक ग्रहण इच्छा होने पर भी नहीं कर सकता है. क्या कारण है इसकी? इसकी जो स्थिति है वो तो बन चुकी है. ऐसे हर समय के परिणाम पदार्थ के विज्ञान अनुसार रहते हैं या होते हैं. इच्छा हुई इसलिए कोई काम हो गया, ऐसा नहीं. इसलिए परिणाम को बनाने का जो अभिप्राय है वो मिथ्या है. मिथ्या क्यों कहा? बनाने से कोई बनता है ऐसी बात नहीं. बनने लायक हो तो बनता है, नहीं बनने लायक हो तो नहीं. स्वयं के विषय में जो परिणाम की ये स्थिति है तो दूसरों का तो कोई विचार ही नहीं कर सकता. सभी पदार्थ है, परमाणु से लेकर के सभी जगत के पदार्थ हैं जो अपने गुण धर्म के अनुसार कार्य करते रहते हैं. अनंत परमाणु का परिणाम होता है, एक परमाणु का नहीं. कितने अनंत परमाणु का परिणाम है, कौन करेगा? स्वतः होता है कि जब इतना बड़ा परिणमन स्वतः होता है तो एक एक परमाणु करके वो स्वतः हुआ है बड़ा दिखता है। फिर कर्तृत्व से होता तो समूह का हो जाता, जिनको इच्छा हुई उसका हो जाता। जो जो जीव को अपने हित की इच्छा हुई परिणाम उसका हो जाता।
इच्छा और भावना में कुछ फर्क है क्या?
भावना आती है वो भवित्व के अनुसार आती है, इच्छा नहीं। भावना आती है वो वहां से आती है जो होना रहे उसके अनुकूल आती है, जिसके होना अच्छी है उसको भावना आती है। भावना लाई जाती है क्या? क्या आती है? क्या बात है? इच्छा करता है जी, भावना लाई जाती है क्या? तो भावना आती है इसका मतलब क्या है कि उस योग्य ये पदार्थ की परिस्थिति होने की परिस्थिति नजदीक में है, समीप में है, ऐसा ज्ञान हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचाने तो अनंत ज्ञान, अनंत पुरुषार्थ की खानी तो खुद ही है। तो मेरे में कुछ कर्तव्य है वो सब बात तो है नहीं। वो अनंत ज्ञान और अनंत प्रसादशाली अनंत गुणों की जो खानी है, वस्तु का स्वरूप है, उसमें कुछ करना है वो तो अवकाश नहीं है। तो मेरे में कुछ करने का अवकाश नहीं, ये अभिप्राय एक मिलता है। बस परिणाम स्वतः शुद्धि की ओर ऑटोमेटिक काम करने लगता है बिना कर्तृत्व। स्वरूप में तो कुछ कर्तव्य नहीं, पूर्ण होने से स्वरूप पूर्ण होने से उसमें कोई कर्तव्य नहीं, ऐसा स्वयं को भासित होता है और कार्य होने लगता है और बिना कर्तृत्व होने लगता है। उस वक्त कार्य आंशिक रूप में बनता है और कुछ रागादि चलते रहते हैं विभाव, तो पर रूप में भाषित होते हैं। मेरे स्वरूप में नहीं, मेरा कर्तव्य भी होता है। पदार्थ की कोई ऐसी स्थिति रहेगी जैसे एक पत्थर सारे दिन सूर्य के ताप में रहा, बाद में थोड़ा गर्मी उसमें चालू है, सूर्यास्त होने के बाद भी गर्मी चालू है, तो ये वैज्ञानिक परिस्थिति है, उसमें क्या करें। ऐसे राग बाकी राग साधक को कुछ अंश में वो तो समझता है कि अनादिकाल का जो विभाव तीव्र रस से किया है तो कुछ समय तक वो चालू रहने वाला है, कर्तृत्व के जोर से उस हम मिटा नहीं सकेंगे। सही पदार्थ का विज्ञान का ज्ञान है वो असमाधान को समाप्त कर देता है, असमाधान को समाप्त कर देता है, असमाधान के कारण जो आकुलता हो वो भी समाप्त करे।
वेदांत वगैरह में जो इच्छा रहित बना कहा गया है, वेदांत वगैरह में जो इच्छा रहित बना कहा गया है, उसके पीछे में ये साइंस नहीं है।
वहाँ साइंस नहीं है, लेकिन बात तो उन लोगों ने यहाँ से पकड़ी है, कुछ अंश में जो है सही रूप में नहीं पकड़ी है, लेकिन जो कुछ अंश में पकड़ी है वो तो यहाँ से पकड़ी है। उतना है परिणाम में सहजता नहीं रहती है तो कर्तृत्व की आकुलता चालू रहेगी, तो असम्यक है, सम्यक नहीं, उतना मुद्दा है। जी तो ये इच्छा हुई कि मेरे परिणाम सुधरे तो ठीक है, फिर भी परिणाम सुधारने का जो विज्ञान है उसी तरीके से सुधरेगा या कोई दूसरे प्रकार से सुधरेगा? जैसे गाड़ी बंद पड़ी है, कार, तो उसकी जो मशीनरी है, जो विज्ञान है, उसी वो ठीक होगी, मशीनरी तो चालू होगी, चालू होने का जैसे धक्का लगाने से थोड़ी चालू होगी। ये कर्तृत्व वाली बात है, वो तो विज्ञान को ठीक नहीं, मशीनरी को ठीक नहीं करके धक्का लगाने की बात है। गाड़ी को धक्का लगाओ, बैठ के जाना है या धक्का लगा के जाना है, उसको तो मशीनरी को ठीक करो, फिर बैठ जाओ। अहमदाबाद में वकट आ गया जी है, उनका एक दिन ठहरने का हुआ, बहुत से अनेक प्रकार के साहित्य को बहुत पढ़ता है, ऐसा नहीं मैं दिगंबर जैन हूँ या जैन हूँ तो जैन का एक असर बात, जो भी साहित्य उनको बौद्धिक विषय, बुद्धिमान आदमी होता है तो बौद्धिक विषय जो भी साहित्य उसको पढ़ता है, तो वर्तमान संप्रदायों में क्या है कि बुद्धि का विषय नहीं, रूढ़ी का, रिवाज का, अंधश्रद्धा का जो परिस्थिति है, उनको धर्म मानते हैं प्रसिद्ध रूप से, एक सीधा प्रश्न है सचिव भाई, धर्म क्या चीज है आखिर? वो तो प्योर साइंस है, नथिंग एक्सेप्ट साइंस, ये बात बढ़िया है, ये मुझे पसंद है। ऐसा सब तो नहीं कहते, मैंने कहते कि नहीं कहते, हम तो ये समझे धर्म है कोई विज्ञान है, पदार्थ विज्ञान है, ये बात बिल्कुल बुद्धि में कोई बात नहीं बैठती है, सामान्य रूप से मनुष्य को सोने से या निद्रा आने से थक थकान मिटती है, सामान्यतः ये परिस्थिति खाने से पीने से तृप्ति होती है, परंतु ज्ञान दशा कोई विलक्षण परिस्थिति है जिसमें विश्राम धाम स्वस्वरूप से भिन्न सोने आदि भाव में आकुलता और दुख होता है। देखो तो जितना परिणाम स्वरूप विश्राम धाम ऐसा जो आत्मा अनंत शांति का धाम है उसमें शांत 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 परिणाम होते वही आराम है। सही आराम तो वह है कि उसको जम जावे, उसमें स्थिर हो जावे, उसको जो आराम मिलता है वो आराम कभी सोने आदि में तो नहीं मिलता है, तो आकुलता है एक प्रकार की। और खाने पीने में परिणाम में उदासीनता आती है। संसार में जिस खाने पीने में लोगों को आसक्ति होती है, अच्छा लगता है, उदासीनता। क्यों? क्योंकि ज्ञान रस और सुख रस पीते हैं वो, उसमें उनको तृप्ति मिलती है। ज्ञान रस और सुख रस के अनुभव में उनको तृप्ति मिलती है। और वही उनका आहार है, आहार से पीने से जैसे तृप्ति मिलती है उसी रस में उसको तृप्ति मिलती है, तो वही उनका आहार हो गया। जैसे आहार खाता है तो शरीर बल आता है, पुष्टि मिलती है, निर्बल हो मुखे हो निर्बल हो शरीर में उसको आहार दो तो पुष्टि मिलती है, बल मिलता है। वैसे ये ज्ञान और सुख से आत्मा को ताकत मिलती है, ज्ञान रस सुख रस पीने से उनको पुष्टि मिलती है, परिणाम में ताकत आती
है। मैंने बारह महीने का, छह महीने का, महीने भर का उपवास करते हैं मुनिराज से, छह महीने बारह महीने का उपवास करते हैं आहार नहीं मिलता है उनको, तो ऐसी स्थिति में क्या उनको दुख नहीं तो होता?
बिल्कुल सवाल ही नहीं। विलक्षण परिस्थिति है ज्ञान दशा, सारा जगत से बात उठती है। ऐसे सुभाष भाई थे, मृत्यु के नजदीक बीमारी शरीर की बीमारी में मृत्यु के नजदीक थे, समीप थे, और उसी परिस्थिति में जब सम्यक दर्शन उनको हुआ तो कितनी ताकत आई है परिणाम में। शरीर में बीमारी है भूल गए हैं, शरीर की बीमारी को भूल जाता है, परिणाम में तो कितना बल आता है। अनंत शक्तियों का पिंड हूं तो परिणाम में उसका आधार में होने से कितना बल आता है, कितना बल मिलता है। शरीर की कमजोरी से भिन्न कोई अपना अनंत शक्ति में तत्व है, उसमें अपनापन आ जाता है, शरीर से भिन्न हो जाता है। ठीक है कि पर्याय मेरी नहीं है, शरीर छूटता है तो उसका कोई दुख नहीं है, दुख तो अपनत्व होने से दुख है, इसमें अपनत्व नहीं रहा। दूसरे की चीज टूटती है फूटती है, दूसरे का मरण का समाचार पढ़ते हैं कि मरण क्या दुख होता है, ऐसा ही हो गया, शरीर छूटेगा तो ये पर्याय तो छूटने वाले थी। मैं ध्रुव धाम में से, मेरा ध्रुव धाम में से क्या छूटता है, मेरे पास कुछ नहीं। कोई चिंता नहीं है।
शेर वगैरह उनके शरीर को काटता हो महाराज के, तो उनको दुख नहीं होता?
नहीं, सुख होता है, दुख भी होता है।
सुख होता है?
सुख होता है अवश्य। सुखी होते होते वो देखते हैं कि ये हो रहा है, मेरे को तो छू ही नहीं सकते, स्पर्श ही नहीं कर सकते। सुखी होते होते वेदना को भी, सुखी होते होते सुख को पीते पीते वेदना को जानते हैं, भोगते नहीं। वेदना होती है, वेदना होगा कि नहीं होगा? तो वेदना को जानते हैं, वेदना को भोगते हैं, वो भी सुखी होते होते सुख पीते पीते जानते हैं।
ना तो जरा कोई सुई लगावे तो सारा जैसे ज्ञान, सारा व्यापार एक दिन आ जाता है, इतना दुख महसूस होता है।
क्योंकि ऐसी कल्पना होती है, तो कल्पना ऐसी होती है, तो उनका हाथ कट गया, उसको पता ही नहीं है कहाँ हाथ कट गया। मामूली बात है, हाथ कट जावे तो मामूली बात है, मेजर इंजरी है, उनको नहीं पता है। पता उस वक्त नहीं पता है, बाद में पता चला है। तो उपयोग वहां जाता है, जब उपयोग की अनुपस्थिति है तो कुछ भी हो जाएंगे शरीर को,
बेहोश नहीं हुए थे। बेहोश हो जाने से कभी पता नहीं लगता है
कि बेहोश नहीं था,
होश था पूरा।
बात करता, बात किया है सब, फिर शुरू से बात करने लगे। उस वक्त क्या है कि कटा हुआ था, ध्यान नहीं था। जैसे आपको बहुत दर्द हो रहा, सिवा दर्द कुछ खाना पीना बात करना कुछ जचता नहीं है, क्योंकि इतना दर्द है। उस वक्त कोई ऐसा बनाव बने कि जैसे कोई अपने प्रिय से प्रिय चीज है, जो बहुत साल से अप्राप्त हो, उसकी प्राप्ति उस वक्त हो जाए। जैसे 25 साल से ना बेटा गुम हो गया है, कोई ले गया है, वो मिलता है, तो दौड़ के उसको भेजते हैं, तो दर्द उसको मिट गया था क्या? दर्द था वो मिट गया था क्या? दर्द तो चालू है, फिर क्या हुआ? अभी इनका साइंस को देखे कि हुआ क्या, तो हुआ क्या, अपना जो ज्ञान का उपयोग था वो वहाँ से वह एब्सेंट हो गया। बस यही विज्ञान जो है उसको वही सीखना है इसमें से, कि हम किसी भी दुख के प्रसंग से अगर हमारा ज्ञान को एब्सेंट कर सकते हैं तो दुख जैसी कोई चीज नहीं। अगर वहां रुकते हैं ज्ञान से, ध्यान से, तो इतना दुख भोगेंगे, कोई छुड़ाने वाला नहीं है वहां से, कोई छुड़ा नहीं सकता।
नरक में ज्ञानी होते हैं तो नरक की वेदना को भोगते नहीं
है? नहीं, नहीं भोगते, जानते हैं भोगते भी, क्योंकि उसको ये अनुभव रहता है कि मेरे में कुछ नहीं, मेरे बाहर जो कुछ होता है उसको मैं जानता हूँ, मेरा अस्तित्व में उसका नाम निशान नहीं।
ऐसी दशा कैसे प्राप्त?
ऐसी दशा, ऐसा जैसा वस्तु का स्वरूप है, ऐसा ज्ञान करे, ऐसा प्रतीत करे,
ऐसा ही है। वस्तु वास्तव में ऐसा ही है।
हाँ,
अपने कल्पना की आदत
बनाना नहीं है, वस्तु स्वरूप से ही ऐसी है, उसको हम जानते नहीं है, विपरीत जानते हैं। मैं शरीर वाला हूँ ऐसा जानते हैं, वास्तव में आत्मा शरीर वाला है नहीं, बिना शरीर वाला बनाना नहीं है, है ही बिना शरीर वाला, उसका ज्ञान करना, उसमें विश्वास करना, ये जहां तक नहीं होता तो दुख से कोई छुड़ाने वाला नहीं, शरीर का सभी दुख पीते हैं। उसका आहार है, उनको तृप्ति होती है, पुष्टि भी मिलती है,
उनको तो थोड़ी नींद नहीं आवे तो मालूम नहीं रहता, काम में मन नहीं रहता है,
निगाह तो नींद लेते ही नहीं, निगाह जैसे नींद लेते ही नहीं, आती ही नहीं, एक सुख का करंट चलता है भीतर में तो नींद आती नहीं,
तो हमने क्या आकुलता को सुख मान लिया,
सुख आकुलता को सुख मान लिया, दुख में सुख की कल्पना करे वास्तविक नहीं है तो वो बात चलने वाली नहीं है, खोटा सीखा कहां से चलेगा, दुख में सुख माना इसलिए कोई दुख सुख हो सकता है, कांच को हीरा माने तो कोई कांच हीरा हो जाता है, मानने से क्या होता है, वास्तविकता बदल जाती है कल्पना करने से,
अकेले महाराज जंगल में ध्यान करते हैं, शेर वगैरह घूमते रहते हैं तो भय उनको नहीं लगता है,
सवाल
क्या ऐसी उनके पास पावर आ गई है,
अभ्यास स्वरूप शाश्वत होने कोई मुझे छू नहीं सकता, मेरे गढ़ में किसी का प्रवेश नहीं, आत्मगढ़ में प्रवेश नहीं किया, अवैध किला उसमें बिल्कुल सेफ है, बैंक का सेफ डिपॉजिट वॉल्ट टूट सकता है, लोग माने नहीं माने से क्या मतलब है, देखे ये कोई दूर हीरा को दुनिया नहीं पहचानती, क्योंकि हीरा देखने में खुद को जोरे को बनना पड़ता है, इसलिए कोई कोई जो हीरा का मूल्य कम हो जाता है, जैसा है वैसा है, कोई जाने नहीं जाने से इससे कोई मतलब नहीं, वस्तु की जो परिस्थिति है वो तो दूसरे से आधारित नहीं, पहले तो विश्वास आना मुश्किल है,
वही मैं प्रश्न
कर रहा हूँ, विश्वास आना
मुश्किल है, महाराज तक तो लोगों ने आंगू के पास सुना, कुछ लोगों ने कहा देखा इसे भी घूम रहा है ऐसा, उसके बाद तो ऐसा प्रसंग और कम ही आ रहा है जो किसी साधु या ऋषि मुनि पर तपस्या कर
ऐसी स्थिति में आता है, वे भी मनुष्य थे जब थे, वो भी मनुष्य थे ना, सहज पुरुषार्थ में परिश्रम के और थाक नहीं थकान नहीं लगती, मैंने जो आर्टिफिशियल वैभाविक क्रिया है वो विकार में थकान लगेगी, स्वभाव में थकान नहीं लगती, जैसे आदमी शारीरिक परिश्रम करता है तो थकान लगती है, श्वासोश्वास में किसी को लगे क्या, नॉन स्टॉप चलता है, नींद में भी चलता है, तो उसको बंद करो तो आप तकलीफ होती है, चालू रहने में तकलीफ होती है, एक आदमी को उठ बैठ कराओ तो थक जाएगा, श्वासोश्वास में ऐसा नहीं होगा। बहुत बहुत साल तक श्वास लिया छोड़ा लिया छोड़ा, अब तो थक गए, बताए क्या करें। स्वाभाविक है उसमें थकान कैसे लगे, विभाविक है उसमें थकान लगे, ये स्वभाव की चीज है। सुख में थकान नहीं है, आत्मिक सुख में विश्रांति है, अनादि का थकान उतर जाता है, थकान को जितनी है सब मिट जाएगी।
सोने में आकुलता है, ये बात तो कैसे
इस दुनिया की बात नहीं है, इस दुनिया की बात इतनी वर्ष दुनिया में जो चल रहा है इससे कोई दूसरी बात
है।
है एक वास्तविकता है, तो किसी भी प्रवृत्ति में थकान ही लगेगी, जिसमें आराम माना है वो तो कल्पना से माना है, वास्तविक होता तो वहां से उठे ही नहीं। अगर सोने में सुख होता तो कोई आदमी उठता ही नहीं, सोते ही रहता, इतनी सुविधा वाले है कि नहीं जगह, जिसको सोने के सिवा कोई बोझा नहीं है काम, फिर भी वो सो नहीं सके। तो वो तो ऐसा कहेगा कि जिसको शारीरिक परिश्रम लगता है उसको नींद अच्छी आती है, हम लोगों को शारीरिक परिश्रम नहीं है तो हम सोते हैं फिर भी आराम नहीं मिलता है, परेशानी होती है सोने में भी। आराम हो तो क्यों छोड़े, एक भी ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि जिसको छोड़नी नहीं पड़े, ये सिद्ध करता है या साबित हो ही जाता है कि जो भी सुख माना था या आराम माना था वो सब कल्पना थी, वास्तविकता वहां थी नहीं। ऐसे लोगों ने खोज किया तो फिर है क्या, वास्तव में हमें आराम चाहिए, वास्तव में हमें सुख चाहिए, तो फिर कहाँ से मिलता है। उन लोगों ने खोज किया जो इतने बुद्धिमान थे, उन्होंने खोज किया कि ये तो इसका पता लगाना ही है, क्योंकि बिना आराम चैन नहीं, ये बदलना पड़ेगा क्या बार बार, कुछ ऐसा कोई होना चाहिए दुख का, ढूंढ लिया है अपने आत्मा में ही है, कहीं बाहर जाना वही परेशानी है, तो ज्ञान ध्यान में अपने में स्थिर हो गए कि भगवान को क्यों ऐसे स्थापित करते हैं, मंदिर जी में क्यों ऐसा स्थापित कर दिया, क्या संकेत है इसका। तो सादी अनंत अनंत समाधि सुख में विराजमान ऐसे ही हुआ जाना, ऐसी विलक्षण कोई परिस्थिति है वो किसी को नजर में आती है, समय को नजर में नहीं आती। उस पर ध्यान जाता है तो उस दिशा में प्रयत्न करता है, प्रयत्न करता है उसको प्राप्त होता है। आत्मशांति के लिए जगत में विश्व में बहुत से तरीके लोग अजमाइश करते हैं, कोई योग का प्रयोग, कोई ध्यान का प्रयोग, कोई क्या कोई भोग, योग भोग कुछ भी, जैसा भी जिसके दिमाग में आए ऐसा कर लेना है। लेकिन आखिर में उसका साइंस क्या है ये समझ में आ रहा है, और उसी पद्धति से कोई काम करे तो प्राप्त हो सकता है। अंधश्रद्धा से नहीं मानना है कि धर्म में शांति मिलती है, तो धर्म क्या है?
साइंस का जो प्रतिति है ये प्राप्त ऐसे अवस्था प्राप्त होने के पहले ही हो जाता है कि ये
समझ में तो पहले ही आता है, फिर प्रयोग होता है। कोई भी बात तो पहले समझ में आती है फिर उसका प्रयोग होता है।
आपने कहा वैसे जैन धर्म साइंस साइंस है, साइंस तो ऐसा लगता नहीं है इसमें, सब ऐसा लगता है ऐसा करो ये करो ये करो ऐसा करने से धर्म होगा।
अंधश्रद्धा से कुछ भी मान होता नहीं, शांति
नहीं। जनता मंदिर में जाके पूजा करते हैं,
कुछ भी करो,
उपवास करते हैं, अच्छे से
कुछ भी करो, शांति नहीं मिलता, नहीं मिलने वाले, इससे नहीं मिलने वाला। जो अपना जो शांति है वो अपने स्वरूप में एक संपत्ति है आत्मा की, उसमें एकाग्र होने से शांति मिलती है।
आज के जमाने में एकाग्र कैसे हो सकता
है?
इस जमाने में एकाग्र कैसे हो सकता है? कपट दुनियादारी कैसे कर रहा है?
बहुत ये तो बहुत बढ़ गई है वो सब चीज़ें, तो अशांति भी बढ़ी है, इसमें क्या बढ़ा है? इसके फल स्वरूप अशांति भी बढ़ी ही है, दुख भी बढ़ा ही है। तो ये वैज्ञानिक है, ये भी साइंस है, अशांति का बढ़ना वो भी साइंटिफिक है, और शांति का होना भी साइंटिफिक है। जिस रास्ते से अशांति बढ़ती है उस रास्ते पर चले तो अशांति बढ़ेगी चलने से, जिस रास्ते पर चलने से शांति बढ़ती है वहाँ शांति
बढ़े। कुछ लोग अगर चाहें कि हम शांति से जीवन अपना चलाएं कैसे चला सकते, मेजोरिटी तो उन्हीं लोग की अशांत वालों की जाती हो रही है।
वैसे हमारे देश में मेजोरिटी गरीबों की, इसलिए कोई पैसा वाला ऐसा सोचेगा कि हम क्या करें, मेजोरिटी तो उन लोगों की है। जिसके पास संपत्ति है वो ऐसा थोड़ा सोचेगा कि मेजोरिटी तो गरीबों की, हम कैसे पैसे वाले रह सकते हैं, ऐसा नहीं सोचेगा वो। हर हालत में अपनी स्थिति बनाए रखने का ही सोचेगा, मेजोरिटी कुछ भी हो हमें क्या लेने देना, हमें तो हमारा सुख चाहिए। वैसे जिसको ऐसा होता है कि दुनिया के जाने मुझे मेरी शांति चाहिए तो मैं इसका रास्ता पकड़ूंगा, जिस रास्ते पर मुझे शांति मिले वो रास्ता मैं चलूंगा, दुनिया की जाने। और ये दुनिया में रहना कितना, 150 साल, 150 साल से क्या ज़्यादा है? मैं तो कहाँ से आया कहाँ जाऊँगा सबका विज्ञान है, विश्वास आता है, पता चलता है। जैसे सतपुरुष कहते हैं कि अल्प काल के कल्पित अल्प सुख के लिए अनंत काल के अनंत दुख की परिस्थिति कौन बनाएगा? बुद्धिमान तो नहीं बनाएगा। दारू पीने वाला तो ये कहेगा कि भले ही तुमको दारू पीना अच्छा नहीं है लेकिन हमको तो मजा आती है, तो बहुत मस्ती पर चढ़ती है हमको, तो जैसे स्वर्ग में पहुंच गए ऐसा ही बोलेगा। हमको तो स्वर्ग पीने के बाद तो जैसे हम स्वर्ग में बैठे हैं, राजा पक्ष में आ जाते हैं, क्या बोलते हैं, हम जैसे राजा है सारे विश्व के। कितने काल तक? थोड़े घंटे तक। परिस्थिति बिगड़ेगी, माइंड भी खो जाएगा, दिमाग भी खो जाएगा, शरीर खराब हो जाएगा, शरीर खराब होने वाला है। विचार माने तो ये सोचता है कि थोड़ा घंटे के लिए थोड़ा सुख, वो भी काल्पनिक, इससे कोई इतनी खराबी हमें नहीं करनी चाहिए, तो वो कुछ भी उनकी बात वो नहीं सुनेगा कि भले तुम स्वर्ग में थोड़े घंटे तक चले जाते हो लेकिन ऐसा स्वर्ग हमें तो नहीं चाहिए, ठीक है ना। वैसे ये बहुत बहुत दीर्घ दृष्टि का विषय है। 150 साल की हम सोचते हैं, ये शॉर्ट साइट मानी गई है इस क्षेत्र में, इस प्रकरण में। बहुत लंबे काल की सोचने का ये विषय है, क्योंकि किसी पदार्थ का विज्ञान के अनुसार तो सर्वनाश है ही नहीं। एक परमाणु भी नाश नहीं होता, न एक परमाणु कभी पैदा होता है। ऐसे कोई जीव कभी न नाश होता है न कोई जीव पैदा होता है। अवस्थान से अवस्थान्तर, रूप से रूपांतर, यही विश्व की परिस्थिति है कि जो परिवर्तनशील है। सारा विश्व परिवर्तनशील है, एक सेकंड के लिए परिवर्तन रुकता नहीं किसी का। फिर भी पदार्थ है, उसका कोई नाश नहीं है, ना कोई नई उत्पत्ति है। जब हमारी ये स्थिति है तो हमें ये देखना है कि आगामी जितना भी हमारा एग्जिस्टेंस जितना लंबा है, उतने काल तक हम दुखी नहीं होंगे और सुखी होंगे, ऐसी कोई रास्ता निकलता है तो ये रास्ता हमें जाके जैसे कैसे भी हासिल करना है, यही रास्ते पे जाना है। जैसे कोई कहेगा आपको मृत्यु नहीं होगी, ऐसे टैबलेट दे देते तो किसी कीमत पे कोई खरीदेंगे, खर्च करके भी ऐसा नहीं देखेंगे, जो भी खर्च करेंगे तो फिर लड़कों का क्या होगा, ये क्या होगा, हम तो मर जाओ, नहीं हमारा मरना अच्छा है, ऐसा कोई नहीं सोचेगा, उसको तो जिंदा रहना है। ऐसी बात तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है इसलिए कोई असंभव है ऐसी बात नहीं। बहुत लंबा काल तक की कोई व्यवस्था बिठानी है, सुख के लिए कोई व्यवस्था बिठानी है तो इसका कोई उपाय है नहीं है, ऐसे बात नहीं। जिसको उसका रस आता है वो उस लाइन में जाने के लिए प्रयास करता है।
संसार में छोटा सा जो 10-20-50 करोड़ का फैक्ट्री बैठाता है, कितना तैयारी करता है?
वो तो 150 साल तक के लिए है ना, जो भी बात है
हमारी जिंदगी है।
लेकिन अपनी जिंदगी उतनी ही हम महसूस करते हैं, ये शॉर्ट साइट है, ये कहने का अभिप्राय है। कोई इसके बाद भी क्या होगा क्या नहीं होगा उसको कोई हम विचार नहीं करेंगे तो इसका मतलब नहीं है कि हमारी परिस्थिति आंख बंद करने से सुधर जाती है। बिल चुहा ये समझे कि बिल्ली आने से आंख बंद कर दो तो बिल्ली नहीं खाएगी आंख बंद करने वाले, वैसे वैसे हम आंख बंद कर दे मृत्यु के बाद जो भी होगा सो होगा, हमको तो आंख बंद कर देनी है, तो इससे कोई दुख नहीं होगा ऐसी बात नहीं। हम सारे दुखी प्राणियों को देख सकते हैं, जो भी हमारे मनुष्य के सिवा भी बहुत से प्राणी हम उनको नजर में आते हैं, क्या दुखी नहीं है क्या? जैसे गाड़ी को घोड़ा दौड़ते हैं, 6 आदमी बैठ जाता है, वो बीमार है, तो बीमारी है कि नहीं है उसका पता नहीं है, चाबुक लगाएगा, खेचो उसको, इतना भी उसको दुख होगा, कौन उसका उसका क्यों ऐसा हुआ? तो उसने अपने लिए आँख बंद कर दी, मैं दुखी होगा कि नहीं होगा उसका विचार नहीं किया। बुद्धिमानी तो इसमें है कि जो अपने सुख दुख के लिए कोई सही रास्ता है।
सुलभ उपाय क्या है?
सुलभ उपाय ये है कि जैसे हम हमारे शरीर तक के तबीबी विज्ञान से अनजान है, क्योंकि हमारा व्यवसाय है कोई अलग है, तो तबीबी विज्ञान शरीर का तो जरूरत है, लेकिन हमने ये सोच लिया जब भी हमको कोई किसी भी प्रकार का तंदुरुस्ती बिगड़े, किसी भी प्रकार से बिगड़े, हमें डॉक्टर के पास जाना है, उतना तो हमने समझ लिया है, भले हम नहीं जानते कि ये कौन सी बीमारी है, कौन सी दवाई लेनी है, उसका टेस्ट क्या है, निदान क्या है, इलाज क्या है, लेकिन उतना तो समझते हैं कि डॉक्टर के पास जाना है। वैसे ये भी एक संसार में एक रोग है जिनको अवरोग जिसको कहते हैं, एक भाव में से दूसरा भाव में, दूसरा भाव में से तीसरा भाव में, शरीर में दुख दुख, जन्म लेने में भी दुख, मरण करने में भी दुख, और बीच में भी बहुत से प्रकार के दुख। तो ये इस रोग को मिटाने के लिए इसका कोई डॉक्टर है क्या? पहले तो फर्स्ट थॉट ये आना चाहिए कि इसका भी कोई डॉक्टर है क्या? तो इसका कोई डॉक्टर है तो इनके पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम इस विषय से अनुभिज्ञ है, जानते भी। तो सबसे आसान से आसान कोई बात है तो उतनी है कि इनके जो जानकार है इसके पास में जाना चाहिए। तो बहुत सी बात तो प्रसिद्ध है हमारे संप्रदाय में, ये पावापुरी एक भगवान का निर्माण हुआ था यहाँ से 2500 साल पहले। मतलब क्या हुआ? तो उसका जन्म मरण का रोग मिटा था। निर्माण का मतलब ये है कि मोक्ष हो गया, आगे जन्म मरण उसका नहीं होगा। कैसे हुआ? ये भी हमारे जैसे मनुष्य थे, दूसरे दिन थे, वो भी अपना जन्म लिया उन्होंने संसार में, बड़े हुए बचपन से खाते थे पीते थे, उन्होंने क्या क्या किया, कैसे किया? अच्छा है कि इस विज्ञान की जो साहित्य है वो विद्यमान है, तो वो भी अच्छा है कि इस साहित्य के जानकार भी विद्यमान है। दो बात है, ये वो बड़े सौभाग्य की बात है कि वो दो चीज आज भी रह गई है 2500 साल के बाद भी। एक जमाना ऐसा आएगा कि न डॉक्टर रहेंगे न डॉक्टर की किताब रहेगी, जब तो बहुत मुश्किल वाली बात है, लेकिन आज वो परिस्थिति नहीं है। उतने तो हम भागशाली जब अवश्य, लेकिन उतना हम दिलचस्पी लेकर के माथा लगाए तब तो काम हो।
आज के समय में बोलता हूँ कि कोई व्यक्ति भी केवल न केवल ज्ञान होगा न तो मोक्ष होगा,
भले केवल ज्ञान नहीं होवे, लेकिन केवल ज्ञान भविष्य में होवे ऐसा आरक्षण हो सकता है तो भी बड़ी बात है। अगर रिजर्वेशन मिलता है तो कुछ समय के बाद हो गए उसके, उसमें इतनी बड़ी आपत्ति नहीं है, लेकिन सिक्योर तो होनी चाहिए, सीट तो हमारी सिक्योर होनी चाहिए, ये हो सकता है ऐसा। ये परिस्थिति खुली है,
और बढ़ सकता हूँ कि जैन समुदाय में इतना संप्रदाय क्यों? ये भगवान महावीर ही के टाइम से था कि साधु संत के इधर बाहर से चले
गए, पहले ज्यादा था, हमारी संख्या घट गई है।
अच्छा, भगवान महावीर के
उस वक्त बहुत थे,
बहुत ज्यादा लोग
बहुत थे,
संप्रदाय था,
संप्रदाय देखा, संप्रदाय उसमें बहुत थे जैन में।
नहीं जन्म नहीं वेद प्रभेद नहीं थे, मत मतांतर इतने नहीं थे। आज तो क्या है कि एक दूसरा से एक दूसरे का विचार भेद हो जाता है तो अलग अलग गुटबंदी हो जाती है और फिर रास्ता अलग अलग निकाल देते हैं अपने आप। ऐसा उन जमाने में नहीं था, अनुशासन था, भगवान का अनुशासन था। तो लोग मानते थे कि इनके अनुशासन में हमें चलना है, हमारा विचार भेद हो गए तो भी हमें शांत रहना है, हमें कोई नया कदम नहीं उठाना है। ऐसे लोग उतने सयाने थे, उतने समझदार थे तो अपना विचार भेद से वो दूसरा रास्ता नहीं निकालते थे। अब तो क्या हुआ कि मेरी आपकी नहीं बनती है तो आप आपके रास्ते जो हैं मेरे रास्ते जाता। वो अनुशासन वाली बात जब नहीं रही तो ये सब होने लगा, मानी डिसिप्लिन टूटा हमारा। भगवान था उस वक्त सब डिसिप्लिन में थे कि इनके अनुशासन में चलो। तो वैसे जो जॉइंट फैमिली चली हमारी, लेकिन अनुशासन टूट गया फिर जॉइंट फैमिली नहीं रही, अलग अलग घर होने लगे। ये बात होते ये डिसिप्लिन टूट गया जब से गड़बड़ी चालू हो गई।
भगवान ने जो डिसिप्लिन बताए हैं वो भी मौजूद है,
ग्रंथ मौजूद है, 2000 साल पहले के ग्रंथ आज भी उपलब्ध है और पत्र ग्रंथ भी चाहिए। तो अच्छा है कि उसका अनुवाद हो गया है। तो वो मागधी में थे, अर्ध मागधी में थे, संस्कृत में थे, आज तो अपनी चालू भाषा हिंदी में और अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट होकर के प्रिंट हो गया। इतनी अच्छी बात है ना, तो एक ग्रंथ को देने के लिए 1000-2000 माइल की मुसाफिरी करनी पड़े, फिर भी मिले नहीं मिले। ऐसा जमाना था 200-300 साल पहले, आवागमन के साधन नहीं थे।
250-300
को तो सत्य को देखना है, सत्य को ढूंढना है, थोड़ा उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। सही बात क्या है, कैसा
इसी में जैन कम्युनिटी बहुत घूम रहा हो, इसी में जैन कम्युनिटी छोटी कम्युनिटी इतने घूम रहा होगा। कुछ कह रहे मंदिर मत जाओ, कुछ कह रहे भगवान को मत पूछो, कह रहे प्रसाद मत कराओ, तेरा कुछ कह रहा है। इतने संप्रदाय वही कुमराह आज के युवक को वही सोचे कि कुमराह कर रहे हैं।
फिर क्या है अंतिम बात को
अपने बोल रहे हैं कि भगवान महावीर ये कहा।
हाँ, सब भगवान महावीर के नाम से बात,
भगवान महावीर के नाम से
सही बात है। अब देखिए कि आप तो शायद होंगे जैन फैमिली में, मेरा तो जन्म ही जैन फैमिली में नहीं हुआ है। मैं आउट ऑफ जैन कम्युनिटी में से आया हूँ, तो मुझे तो ये विचार जरूर आया होगा कि जगत में कौन सा धर्म सच्चा है। मेरा तो विचार करने का फील्ड कितना वाइड हो गया। एक तो मेरे संप्रदाय वाला सही है कि नहीं है, और क्योंकि वैष्णव और हिंदू का इतना ज़्यादा संख्या है कि अगर संख्या के तौर से देखें तो क्या ये ज़्यादा है, ये सच्चा होना चाहिए, थोड़े वाले कैसे सच्चा हो सकते हैं, ऐसा ही विचार आता है पहले। लेकिन इस तरह से विचार नहीं होता है, इसमें एक शॉर्टकट भी है विचार करने का। ये ऐसा है कि वास्तव में हमारा प्रयोजन है सुख शांति का। धर्म करने से भी हमें सुख शांति चाहिए, अगर सुख शांति नहीं मिलती है तो वो धर्म नहीं है। अच्छा, ये शांति और सुख निर्दोषता के साथ रहती है। जितना भी आदमी क्लेश करता है या जितना भी दोष करता है उतना ही दुखी होता है। जब ये प्रिंसिपली ये बात है कि शांति का रास्ता निर्दोषता के साथ चलता है और शांति का रास्ता दोष के साथ चलता है, तो हमें यहाँ ही कसौटी लगानी है कि किसकी बात निर्दोषता के प्रति हमें ले जाती है, कौन बातें ऐसी है। उसकी अगर हम कसौटी लगाते हैं तो ये बात बहुत आसान हो जाती है कि आज विश्व में देखो कि निर्दोषता, जीवनचर्या में निर्दोषता, जैन कम्युनिटी में जो भी है उतनी किसी एक भी कम्युनिटी में देखने में नहीं आती है। मैंने सारे विश्व में आप सभी को बात करने में एक मिनट लगती है, क्योंकि बात तो ओपन है कि कौन किसकी रहन सहन जीवनचर्या किसकी कैसी है। तो ये पानी भी हमें पीना है तो छान करके पीना है, वहां से लेकर के छोटी मोटी सब बात में कितनी निर्दोषता कहाँ है, तो वह छिपी नहीं है। तो अपना एकदम सीमित परिस्थिति में हम आ जाते हैं तो सबको हम छोड़ करके एक जगह पर आ जाते हैं। ये सबसे तो बढ़िया ही है, उनके अंतर भाव जितने भी आचार विचार सिद्धांत जो है सब निर्दोषता के प्रति कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो बहुत मोटी बुद्धि में ये बात समझ में आ जाती है, इसके बराबर तो उसके त्याग वैराग्य सब देखो तो किसी धर्म में ये जो आचार विचार है इतने शुद्ध और इतने निर्दोष नहीं पाए जाते। अब रही बात
सनातन वाले बोलते हैं मेरा हिंदू वाले है, आज समाजी लोग कहते हैं कि मेरा है,
लेकिन निर्दोष उसके आचार विचार सिद्धांत में निर्दोषता जो है वो तो उसका तो हम चेक कर सकते हैं, कोई कहे इसे हम थोड़ा मान लेंगे, हमको तो चेक करना है। आप कहेंगे कि मेरी बात सही है, आप कहेंगे मेरी बात सही है, मुझे तो चेक करना है कि किसकी सही है, तो बहुत आसान से हो जाएगी, तो उतनी तकलीफ नहीं। जैसे हिंदुओं में जो भी धार्मिक दिनचर्या है इनके साधुओं की और इनके गृहस्थों की, वैसे ही बराबरी में साधुओं के सामने जैन के साधु दे लो, गृहस्थ के सामने जैन के गृहस्थ को दे लो। तो ये जैन फैमिली में कुछ छोटे गांव में अगर तो कोई लकड़ी जलाता है खाना पकाने के लिए तो वो भी देखे जाते इसमें कोई जीव है कि नहीं, फिर उसको जरा खिला करते जो भी है जरा देख लो, फिर उसको चूल्हे में डाल। छोटे गांव में भी ये बात है, अब देखिए कि जैन फैमिली के अलावा है कि कैसे भरी नहीं खाते। वनस्पति में जीव है वो तो आज का साइंस मानते हैं, हम हरी नहीं खाते, बताइए कि कौन से धर्म में ये हरी नहीं खाने की बात है। करीब करीब तो लोग मांसाहारी हैं, हम हिंदू में भी 90% आज मांसाहारी है, जो 10% है वो भी हरी की तो उपेक्षा करेगा, इतना कहाँ से देखेंगे, फिर खाएगी क्या चीजें, इतना देखें तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते हैं, ऐसा करके उपेक्षा करके रखा है। खाएंगे तो दमिकंद खाएंगे, उसमें भी जो वेद प्रवेद है वो जैन में दिखने में आता है, उसमें तो कहेंगे नहीं। हमारे यहाँ तो दमिकंद है, वो लोग तो धार्मिक दिनों में खाते हैं, तो वैसे ही एक दिन भी नहीं खा रहा।
आज दशानी को बोलता है ये हरा खाओ, हरा फल खाओ, हरी सब्जी खाओ, और सभी से हरा खाओ,
मतलब
अब वो कहने की दही मतलब बड़ी जो हम लोग सूखा सब्जी खाते हैं उसमें ज्यादा कीड़ा पड़ता है बनस्पत की अपने हरी सब्जी। ऐसा आज के जो नई नए डॉक्टर नई पद्धति जो अभी है लोग साफ साफ बोल रहे हैं कि जो हरी सब्जी में इतना विटामिन है वो जैसे अपने सूखा सब्जी में तो और बोलते हैं कि बात करता है तो उनका है कि उसमें कीड़ा पड़ जाता है दो दिन तक सूखा रखते हैं। ये
तो निर्जीव और सजीव दो चीज तो समझ में तो आती है, ये निर्जीव है ये सजीव है। सदोषता और निर्दोषता को समझने की कोशिश करते हैं तो फिर इसकी गहराई में जितना भी जाना चाहे उसके सब साहित्य उपलब्ध हैं, उसके जानकार लोग भी उपलब्ध हैं। अपना रस हो तो हम उसमें टाइम निकालेंगे, अपना थोड़ा शक्ति भी उसमें लगाएंगे, हमारा रस नहीं होंगे तो हम समय शक्ति नहीं लगाएंगे, दूसरे काम में लगाएंगे, दूसरी जगह लगाएंगे, ये बात हो जाएगी। जैसे हम भी ग्रस्त लोग हैं, हमारे भी कुछ व्यापार व्यवसाय है, फिर हम 8-10 दिन के लिए सब छोड़ के क्यों है कि इधर टेलीफोन का भी कनेक्शन नहीं, इधर चले जाओ, क्या हमारा रस है कि गहरे में जाना है। जैसे कितना भी व्यवसाय होने पर भी हम निंद लेते हैं, हम खाते हैं जो हमारे जरूरत है वहाँ हमारे समय निकालते ही है व्यवसाय करते हुए भी। वैसे ही अगर हमको इसकी जरूरत लगे तो इसके लिए भी थोड़ा तो टाइम निकालेंगे, खाने पीने जैसा नहीं मिला ऐसे डेली हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, करते भी हैं घंटा दो घंटा।